ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा। तो आज के इस 5 फरवरी के शाम के सत्संग में आप सबका स्वागत है श्री बरसाना धाम में। जीव जो है बद्ध जीव वो यहां पर भगवान से विद्रोह करके आता है, और जब हम भगवान के धाम में थे तो हम बड़े प्रेम से भगवान की सेवा करते थे, लेकिन जिस समय हमने भगवान को छोड़कर आनंद लेने का प्रयास किया तो हम इस भौतिक दुनिया में आए। दिव्य शरीर नष्ट हो गया और भौतिक शरीर प्राप्त हो गया, जो जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा देने वाला शरीर है, बुढ़ा होने वाला मरने वाला वो प्राप्त हो गया। उसके साथ में 3 प्रकार के गुण हम पर काम करने लगे, सत्वगुण रजगुण तमगुण। कभी गुस्सा आता है, कभी दुनिया का भोग लेने की इच्छा होती है, कभी बहुत शांत रहता है मन, सत्वगुण रजगुण तमगुण। और इन 3 गुणों के प्रभाव में हम काम करते हैं, 3 गुणों के प्रभाव में हम काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो जो भी 3 गुणों के प्रभाव में काम करते हैं उसका फल प्राप्त होता है, और उसका फल भोगने के लिए यहीं पर बार बार आना पड़ता है। उस फल के भोग में हम बंध जाते हैं, वी गेट एंटैंगल्ड। और 3 प्रकार के कष्ट हमको साथ साथ साइमल्टेनियसली मिलते रहते हैं, वो है प्रकृति के द्वारा दिए हुए कष्ट, अधिक धूप, अधिक वर्षा, तूफान, आंधी, साइक्लोन, ये सब प्रकृति के कष्ट हैं। कुछ कष्ट लोगों ने दिए हुए हैं, अन्य जीवों ने, हमारे पड़ोसी कष्ट देते हैं, परिवार के लोग कष्ट देते हैं, मच्छर काटते हैं, कुत्ते भोंकते हैं, तो सभी जीव हमको कष्ट दे सकते हैं और देते रहते हैं, वो प्रधानमंत्री होने पर भी टाल नहीं सकते। और एक ऐसा कष्ट होता है जो हम खुद को देते हैं, आप मानते हैं इस बात को? हाँ, कोई सिगरेट पीता है तो अपने आप को कष्ट दे रहा है कि नहीं? शराब पी रहा है तो लीवर खराब कर रहा है, झूठ बोल के अपने आप को परेशानी में डाल रहा है, आलस्य करता है, पढ़ाई नहीं करता, एग्जाम में फेल हो जाता है, तो खुद के द्वारा भी कष्ट प्राप्त होता है, उसको आध्यात्मिक कष्ट कहते हैं। दूसरों के द्वारा जो कष्ट होता है उसको आदि भौतिक कष्ट कहते हैं, भूत यानी जीवों के द्वारा जो कष्ट होता है, और तो प्रकृति द्वारा कष्ट होता है उसको आदि दैविक कष्ट होता है, क्योंकि वो देवता जो है ना वो हमको देते रहते हैं भगवान के आदेश के अनुसार। और इसके बाद में जब यहाँ पर रहना लंबा हो जाता है, क्योंकि भूल जाते हैं ना भगवान को, और भोग लेने का प्रयास करते रहते हैं, आनंद लेने का प्रयास करते रहते हैं, स्वामी बनने का प्रयास करते रहते हैं, नियंत्रण करने का प्रयास करते रहते हैं, आई कंट्रोल वॉट एवर आई सर्वे, और अधिक इकट्ठा करना चाहते हैं, संचय करना चाहते हैं, स्वामी बनना चाहते हैं, नियंत्रण करना चाहते हैं, और लोगों को प्रभाव डालना चाहते हैं लोगों के ऊपर, और अधिक अधिक प्रभाव डालकर खुद नेता और स्वामी बनना चाहते हैं, और इस प्रक्रिया में और दुख भोगते हैं और दुख भोगते हैं और दुख भोगते रहते हैं। इस प्रक्रिया में बीच में कुसंगति प्राप्त होती है, कुसंगति, बुरी संगति प्राप्त हो जाती है, बैड एसोसिएशन। फिर जो सत्संग मिलता है वैसा रंग हो जाता है, वैसे विचारधारा बनती है, वैसे कार्य बन जाते हैं, उसको हम पाप कहते हैं। और पाप का फल भी बहुत डरावना होता है, बहुत कष्टमय होता है, बहुत पीड़ा होती है उसके अंदर। और फिर पाप करते 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 इतना पाप का संचय कर देते हैं कि जन्म जन्मांतर तक बार बार आते रहते हैं। कभी कुत्ता बन के आते, कभी बिल्ली बन के आते, कभी मनुष्य बन के आते हैं, कभी देवता बनकर आते हैं, कभी कीटक बनकर आते हैं, लेकिन आना तो है ही। जब तक ये पाप और पुण्य का खेल चलते रहता है तब तक आना है। पुण्य का भी कार्य करते रहेंगे तो भी आना है। कैसे? अगर पुण्य करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, स्वर्ग में जाएंगे, उधर का भोग लेंगे, अच्छे शरीर में, भोग शरीर में, एंजॉयिंग शरीर में रहेंगे, जो शरीर में बदबू नहीं आती है, मलमूत्र रहता नहीं है, सुगंध आती है एक एक कोस तक, ऐसे शरीर में भोग लेने के लिए जाते हैं। लेकिन जितना पुण्य रहेगा उतना सुख मिलेगा, पुण्य खत्म होगा तो वापस आना पड़ेगा। और पाप करेंगे तो उसका पाप का फल भोगने के लिए नरक में जाएंगे, या तो यहाँ पर जानवर बनेंगे, दुख भोगेंगे, और फिर होगा तो फिर मनुष्य बन जाएंगे। ऐसा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, बार बार लगातार बेसुमार माता के गर्भ में, अलग अलग प्रकार के अंडों में, स्वेद में आना पड़ता है। इस बीच में अगर कुसंगति हो गई ना तो बहुत ही भयंकर काम होता है। और मनुष्य का जीवन जो है वो सत्संगति के लिए दिया गया है, लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार, स्वतंत्रता के अनुसार हम लोग कुसंगति को भी कभी कभी स्वीकार कर लेते हैं। गलत काम स्वार्थ के लिए करने के लिए गलत संगति कर लेते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण महाभारत में आता है, वो है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य सभी कौरव पांडवों के गुरु थे, ब्राह्मण थे, सभी विद्या में पारंगत थे, शस्त्र विद्या में पारंगत थे। उनका पुत्र, उनकी पत्नी जो थी वो कृपाचार्य की बहन थी, कृपि, और उनका पुत्र था अश्वत्थामा। लोग इतने गरीब थे कि अश्वत्थामा को कभी आटे को, होता ना सफ़ेद आटा, उसको पानी मिलाकर दूध के रूप में उसको देते थे। उसको ऐसा क्या करेंगे, गाय नहीं है, दूध नहीं है, तो दूध का बहाना करके उनको आटे का दूध देते थे मिलाकर। फिर वो द्रुपद राजा के पास में आते एक बार। द्रुपद राजा उनके बचपन के मित्र होते, और उसने जब बचपन में साथ में पढ़ते थे गुरुकुल में, तो जो राजकुमार द्रुपद थे उन्होंने द्रोण को बताया था कि आप चिंता मत करना, कभी भी आगे कुछ कष्ट हुआ तो मेरे पास आ जाना। तो वो गरीबी के कष्ट में बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है, इसके पीड़ा में वो जाते हैं कि चलो दोस्त से मिलते हैं, भी वो राजा बन गया है, लेकिन दोस्त उनका अपमान कर देता है, राज दरबार में उसका अपमान करके उनको निकाल देता है। तो वो अपना अपमान द्रोण को इतना हृदय के अंदर उसका अनुभव होता है, बहुत कष्ट वाला, कि वो प्रतिशोध बदला लेने की सोचता है। इस जीवन में मान अपमान चलते रहता है, ये जीवन इसी से बना हुआ है, सुख दुख, गर्मी सर्दी, सम्मान अपमान, यश अपयश, इसी से भरा हुआ है। और ज़्यादा करके अपयश है, ज़्यादा करके अपमान है, ज़्यादा करके कष्ट है, और थोड़ा कम मात्रा में सम्मान है, सुख है, यश है, ऐसा ये दुख बना, जीवन बना हुआ है। लेकिन जब विशेष करके कष्ट आता है जीवन में, तब सत्संग नहीं होगा तो आदमी फिर ऐसे प्रतिशोध बदला इस प्रकार की भावना में चला जाता है। सत्संग होगा तो फिर वो थोड़ा सा संतुलित विचार करेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इतना क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये मेरे ही कर्मों का फल है, ऐसे सब विचार आते हैं। और सत्संग नहीं रहेगा तो जितना दुख दिया उसका 100 गुना कष्ट दूंगा, उतना बदला लूंगा, उसे भी याद रहेगा, ऐसे विचार आता है मन में। तो ये द्रोणाचार्य जो है वो सीधे कौरव देश में, जहाँ पर कौरव लोग हैं वहाँ पहुँचते हैं, और भीष्मदेव से बात करके फिर उनके गुरु युद्ध कौशल के गुरु बन जाते हैं। वहीं से आप सोचते हैं महाभारत का जो युद्ध है ना, उसका बीज वहीं से बोया जा रहा है। ऑल द स्टोरी इज कनेक्टेड बाय समबडीज, किसी का बदला, किसी का रोग, राग, क्रोध शुरू हो जाता है। तो इसमें कौरवों के वंश में द्रोणाचार्य गुरु का नौकरी स्वीकार करते हैं एज अ टीचर, क्या कहते हैं उसको, पगार के साथ, मानधन के साथ, खाना पीना रहना, फिर मुबदला जो होता है ना वो सब देखे। लेकिन तनख्वाह कहां से आ रही है, कौरवों से आ रही है, कौरवों से उनका स्वामी निष्ठा जुड़ गई है अभी। तो जब ये बालक जब बड़ा होता है तो स्वाभाविक रीत्या उसका संग दुर्योधन से होना शुरू होता है, क्योंकि वही धृतराष्ट्र का राजा का पद है और दुर्योधन युवराज है, हाँ वो तारिन पावर, उनका संग हो जाता है उपकार की भावना से कि हमें उन्होंने आश्रय दिया, पाल पोस के बड़ा करने का साधन दिया। तो पौरवों का संग प्राप्त होने के बाद भी मुमकिन है उनके लिए, फिर भी संग लेते हैं दुर्योधन का। भीष्मदेव का संग भी प्राप्त है, वो तो सबसे बड़े संत थे क्षत्रिय के रूप में, फिर भी उनका संग लेते नहीं है, दुर्योधन का संग लेते हैं। इसका परिणाम क्या होता है, अभी आपको पालन पोषण करने वाला व्यक्ति अगर दुष्ट है लेकिन पालन पोषण कर रहा है तो आपके उसके प्रति कृतज्ञता बनती रहेगी ना, थैंक यू वेरी मच, आप तनख्वाह दे रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो जिसका अन्न खाते हैं ना उसकी मति भी हम शेयर करते हैं, इसलिए हमारे भक्त ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, विफल विफले से विनु कृपण दुर्जना चप्पल सुखल बल आगिरे, ऐसे गोविंद दास कहते हैं, भक्ति विनोद नहीं कहते, कि शरीर के, मन के, बुद्धि के, सामाजिक कौटुंबिक स्वार्थ के लिए हम दुर्जनों को सेवा करते हैं, उनसे धन ग्रहण करते हैं, लेकिन उनके धन के साथ जो जिस मति से वो धन अर्जन कर रहे हैं उसकी मति भी हम लोग स्वीकार करते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना तो चावल दाल सब्जी के रूप में है, लेकिन खाने के पीछे जो भावना है, जो इस भावना से बनाया गया है, स्वार्थ के लिए या क्रोध से बनाया या प्रेम से बना हुआ है, वो स्वार्थ क्रोध प्रेम भी हमको परिणाम करता है। माँ के हाथ का दाल भात भी खाएंगे तो हमको बहुत प्रेम आनंद आता है, होटल में 5 स्टार खाने के बाद भी उतना समाधान प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि भावना जो है वो भी साथ में आती है। तो उसी प्रकार से दुर्योधन का नमक खाने की वजह से दुर्योधन की मति भी स्वीकार होती है, और जब महाभारत का युद्ध टरता है तो अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य सब लोग दुर्योधन का पक्ष लेते हैं, उनके पक्ष में युद्ध करते हैं, असत्य के पक्ष में युद्ध करते हैं। और भगवान ने तो बताया है ना, जो सत्य का पक्ष लेगा उसको सत्य के पक्ष का लाभ होगा, असत्य का पक्ष लेगा तो उसका असत्य का लाभ होगा, मतलब नुकसान होगा। और चाहे वो असत्य का पक्ष लेने वाला व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पद से, मान से, सम्मान से, ज्ञान से, जन्म से, फिर भी असत्य का पक्ष लेगा तो उसका दुष्परिणाम प्राप्त होगा। और सत्य का व्यक्ति कितना भी गरीब अनपढ़ क्यों ना हो, सत्य के पक्ष में है तो उसको उसका सुपरिणाम प्राप्त होगा। तो महाभारत का युद्ध समाप्त होता है, आप जानते हैं सब लोग, दुर्योधन का भी वध हो जाता है। और जब दुर्योधन का वध होता है ना तो अश्वत्थामा एकदम तिलमिला उठता है, देखता है किस स्थिति में दुर्योधन पड़ा हुआ है। हाँ, उसको तो उसकी माता ने कहा था ना कि भाई अंतिम निर्णायक युद्ध होने वाला है, अभी तुम आ जाओ, मैं बुला रही हूं आपको, जैसे जन्म हुआ था ना वैसे आ जाओ, क्योंकि उसके दृष्टि में, क्योंकि पति के पतिव्रत्य के वजह से आंख बंद कर रखी थी ना उन्होंने शादी होने से, तब से पति अंधे हैं तो वो भी अंधा बनकर, अंधी बनकर रही, उसके वजह से उसके अंदर बहुत ही श्रेष्ठ प्रकार की शक्तियां उसको प्राप्त हुई थी, तो वो जानती थी कि अगर मैं दृष्टि खोलूंगी तो मेरे बेटे का शरीर वज्र का बन सकता है, और इस समय अभी सत्य असत्य का विचार मन में नहीं आ रहा है, पुत्र प्रेम प्रधान है मन में। वो चाहते कि अभी कुछ भी हो जाए पुत्र को बचाना जरूरी है, अभी मैं सतीत्व मेरा जो है उसका एनकैशमेंट करूंगी। तो बुलाती उसको, और वो नग्न अवस्था में नदी में स्नान करके अपनी माँ की ओर जा रहा है। तो श्री कृष्ण भगवान जानते हैं सब रहस्य को, कि अगर वो पूरा वज्र का बन गया तो फिर पांडव राजा कैसे बनेंगे, धर्म का राज्य स्थापन कैसे होगा। तो फिर रास्ते में रोकते हैं उसको, थोड़ा सा ब्रेन वॉश कर देते हैं, अरे उस वो हिस्से का तो धक्के रखो जरा कम से कम। तो ये बात उसको अच्छी लगती है, इतनी बड़ी सती माता है मेरी, उसके सामने मैं नग्न कैसे जाऊँ, तो कम से कम गुप्तांग को मैं ढक्के रखता हूँ। तो उधर से पत्ते लेते हैं और ढक के चले जाते हैं, और माता कहती है आ गए बेटा, आ गया, जैसे कहा वैसे आ गया, उसे जन्म हुआ वैसे आ गया। तो उनको तके जो मैंने किया है वो सही किया है, कृष्ण ने मुझे अच्छा सलाह दिया है। तो कहते हैं यस। तो फिर अपना पट्टी खोलती है, उसको ऊपर से नीचे तक जब निहारती है तो जहां जहां नजर उसकी पड़ती है उस सारे अंग जो है वज्र के बन जाते हैं, सिवाय उस अंग के जहां पर पत्ते ढके हुए हैं। और जब युद्ध होता है तो माता बोलती है देखो तुमने जीवन में कभी भी किसी का सुना नहीं, हर समय तुम्हारे स्वभाव का एक विशेष अंग रहा है कि आज्ञा पालन नहीं करना किसी का भी, अपने ही मन की करना। अब तक तो ठीक है, अभी क्या कहें, अभी अंतिम युद्ध में भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, उसका परिणाम तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारा सारा शरीर वज्र का हो गया है सिवाय उस अंग के, वो अंग जो है वो कमजोर रह गया है, बाकी सारे अंग में कितना भी गदा प्रहार शस्त्र प्रहार धनुष बाण प्रहार होगा तो भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन उस हिस्से में कुछ होगा तो मैं कुछ कह नहीं सकती। तो दुर्योधन कहते हैं कि अरे मेरा तो युद्ध भीम से होने वाला है, मेरा तो टारगेट भीम है, मेरा प्रतिद्वंद्वा भीम है, तो भीम के साथ मेरा गदा युद्ध होगा, पर गदा युद्ध में तो कमर के नीचे वार नहीं होता है, तो मेरी विजय निश्चित है, कुछ डरने की जरूरत नहीं माता, आप निश्चिंत हो जाओ। लेकिन आप सब जानते हैं बहुत देर तक युद्ध होता रहा, उसमें लास्ट युद्ध चल रहा था ये, बाकी सब समाप्त हो चुके थे और आखिरी युद्ध दुर्योधन सेनापति के रूप में और भीमसेन का हो रहा था। मैं कई दिन तक युद्ध चला हूं, भीमसेन तो ऐसे थक गए ना, क्योंकि वो जितना 10,000 हाथी के बल से उसको प्रहार कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहा है और बलपूर्वक और बलपूर्वक और जोर जोर से हंस रहा है। भीम पूरे 10,000 हाथियों का सारा बल लेकर उसको प्रहार कर रहे हैं और वो जोर जोर से हंस रहा है, बोल रहा है और बलपूर्वक। तो एक समय पर वो भीम एकदम वैफल्यग्रस्त हो गए, विफल विफल विफलता से परेशान हो गए, और कृष्ण की ओर देख रहे हैं, तो कृष्ण बोल रहे हैं उधर मारो उधर मारो। तो वो कहते नहीं कैसे मार सकता हूं, गदा युद्ध का नियम है, तो फिर लड़ते रहो अनंत काल तक। अभी नियम पालन करना है कि धर्म को स्थापन करना है, हाँ दुष्ट का नाश करना है कि नियम पालन करते रहना, ये भी एक प्रश्न है ना। वो जब तक ठीक है तब तक नियम पालन कर सकते, लेकिन जब आपात स्थिति आती है तो नियम तोड़कर भी सत्य को प्रस्थापित करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सन्यासी कोई व्यक्ति है तो वो स्त्री को स्पर्श नहीं करता है कभी भी, लेकिन नदी में अगर स्त्री डूब रही है और वो अकेला है किनारे पे जा रहा है इधर उधर और कोई भी नहीं है, ना स्त्री कोई है ना पुरुष कोई है, वो अकेला ही है, तो वो छलांग लगाएगा नदी में और उसको हाथों से बाहुओं से पकड़कर जैसे कि आलिंगन देते वैसे पकड़कर उसको लेके आएगा बाहर, उसको आपद धर्म कहते हैं। आप उसके लिए उसका संन्यास धर्म का भंग नहीं होता है, उसके बाद में वो किसी के हवाले करके चला जाएगा, दोबारा उसको स्पर्श नहीं करेगा, लेकिन आपात स्थिति में वो उसको स्पर्श करके जीवन बचाएगा, क्योंकि जीवन बचाना अधिक जरूरी है नियम काल पालन करने के सामने, नियम बाजू में रखकर जीवन बचाना जरूरी होता है। उसके बाद में सब सामान्य स्थिति हो गई तो फिर नियम पालन शुरू हो जाता है। तो फिर भगवान कहते हैं कि लड़ते रहो फिर नियम पालन करने के लिए। तो फिर एक समय ऐसा आता है कि उसमें पूरा तिलमिला उठते हैं भीम और फिर उस जगह पर प्रहार करते हैं जिस पर गदा युद्ध में प्रहार नहीं करते हैं। ऐसे लिखा है महाभारत में कि वो प्रहार जब वहां होता है तो कई मील तक दुर्योधन आकाश में उड़ जाते हैं, स्विंग्स इन द स्काई, इतना बड़ा प्रहार, बाकी अंग में कुछ नहीं हो रहा है, उस अंग में प्रहार करते ही वो आकाश में उड़ जाते हैं, और फिर जिस तरह से आकाश नीचे गिरते हैं ना, छिन्न विच्छिन्न होकर गिर जाते हैं, कंप्लीटली स्मैश्ड। उनको देखना भी ऐसा बहुत मुश्किल है, इतना भयंकर अवस्था में गिर जाते हो, पूरा छिला हुआ कमर और कमर के नीचे का हिस्सा, बाकी सब ठीक, लेकिन इतना खून लथपथ मांस सब फैला हुआ सब जगह पे, और भयंकर पीड़ा में दुर्योधन वहां गिर जाते हैं। और उसके बाद अश्वत्थामा वहां भाग भाग के आते हैं। कुछ लोग बहुत जोर से भीम की निंदा करते हैं, कुछ लोग जय जयकार करते हैं, है ना, समाज में कैसा होता है ना, आप कुछ भी करो, अच्छा करो बुरा करो, बुरा करने पे भी सराहना तारीफ करने वाले लोग मिलेंगे आपको, निंदा करने वाले लोग भी मिलेंगे, और अच्छा बहुत सर्वोच्च अच्छा कार्य करेंगे ना, फिर भी आपको निंदा करने वाले लोग मिलेंगे, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक दुनिया है, इसमें ऐसा ही होता है। तो जब अश्वत्थामा बाद में मिलने आए, क्योंकि ये तो गिर गए, तो फिर वो वॉर वहां समाप्त हो गया, तो सब लोग चले गए, और उसी समय कौरवों की हार हो गई और पांडव जीत गए, क्योंकि आखिरी सेनापति गिर गया, अभी कुछ बचा नहीं है। तो अश्वत्थामा मिलने गए तो सुना कि दुर्योधन का ऐसा हुआ, लेकिन सुनना और देखने में अंतर होता है। सुना उन्होंने कि ऐसे ऐसे करके मारा उसको, पहले पिताजी को मारा था ना, वैसे वो भी उसके मन में याद था, कपट से मारा। तो जब दुर्योधन को देखा ना, तो उसको रहा नहीं गया, बहुत रोया, बहुत 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 रोया, उसकी स्थिति को उसकी वेदना को देखकर। और दुर्योधन ने उसको ऐसा कुछ बताया नहीं था, लेकिन उसने मन में अपनी ठान लिया कि अभी मैं रात को जाकर सारे पांडवों का तंबू जला दूंगा। कुसंगति, कुसंगति से बनी हुई आसक्ति, कुसंगति से बना हुआ असत्य का आसक्ति, असत्य के पक्ष में जाने की वजह से जो भी मति में भ्रष्ट हो गई मति, कितना बड़ा, देखो कितने बड़े स्टेप्स है उसके अंदर। तो एक तरह से कितने डेंजरस कंडीशन में अश्वत्थामा है अभी, ऊपर से जो प्रिय मित्र है उसके जिस प्रकार से अवस्था हो रही है, उसके इधर से सारी मति भ्रष्ट हो गई, उसकी सार असार भी, बुद्धि भी नष्ट हो गई, और उसने अपने सैनिकों को उस तरफ से तंबू से, जहां पर तंबू था पांडवों का, जहां पर पांडव उनके बेटे और उनके सब लोग जहां सो रहे थे, अलग अलग जगह पे सो रहे थे, तो शत्रुओं के तंबू में कौन कहां सो रहा है पता नहीं है, तो एक तंबू तय करते हैं, उनको लगता है कि इस तंबू में पांडव सो रहे हैं, तो एक तरफ से अपने सैनिकों को आग लगाने को बोलते हैं एक एक एंट्रेंस पे, तो लोग तो वहां जाएंगे नहीं, जहां पर दूसरा एंट्रेंस है वहां से जाएंगे, तो सब लोग आज रात को भाई अंधेरे में सब भाग रहे हैं, आग लग रही सब लोग, तो दूसरी तरफ ये खड़ा है और जो भी आ रहा है उसको सिर्फ छेद कर रहा है, उसका अंदर जाकर भी कर रहा है, बाहर आ रहे उनको भी कर रहा है, उस प्रक्रिया में पांडवों के 5 पुत्र जो है उनका वध हो जाता है, लेकिन पांडव किसी और तंबू में होते हैं इसलिए पांडव बच जाते हैं। सुबह होती है तो उनको लगता है कि हमने अच्छा काम किया है, और दुर्योधन को जाके बताते हैं मैंने क्या किया, दुर्योधन बहुत कोसता है उसको, दुर्योधन मतलब गलत आदमी था, लेकिन फिर भी नियम पालन करता था, वो कहता था कि हमको ये युद्ध वीरता से जीतना था, शौर्य से जीतना चाहिए था, ऐसे कपट करके छुप छुप के ऐसे रात को नहीं करना चाहिए था, फिर भी वो अश्वत्थामा की मति जो है ना बहुत भयंकर हो रही है। सुबह जब होती है तो द्रौपदी को पता चलता है, और द्रौपदी इतना विलाप करती है, इतनी रोती है, उसके 5 युद्ध में इतना पराक्रम किए हुए 5 वीर पुत्रों का इस तरह से वध हो गया, वो देखकर बहुत दुख करती है, छाती पीट पड़ के रोने लगती है। पांडव आते हुए देखते हैं अपनी पत्नी को, इतना शोक कर रही है, उनको भी रहा नहीं जाता है, और अर्जुन वहीं पर क्रोध से लाल होता है, भीम भी क्रोध से लाल होता है, और भगवान भी बड़े तिलमिला उठते हैं, कहते चलो उसका पीछा करेंगे। तो भीम अर्जुन रथ में बैठकर अश्वत्थामा के पीछे जाते हैं, खबर मिलती है कि वो आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, तो मृत्यु निश्चित है, वो भी रथ में बैठकर भागना शुरू कर देते हैं, और बहुत देर तक भागते हैं, पीछे से अर्जुन भीम और कृष्ण, और आगे अश्वत्थामा और अकेला, उसके घोड़े जो है ना वो इतने थक जाते हैं कि उनके मुंह से झाग आता है और वो बेहोश हो जाते हैं, तो रथ बंद हो जाता है। तो फिर वो रथ से कूदता है और भागता है, तो भगवान अर्जुन और भीमसेन भी रथ से कूदते हैं और पैदल भागने लगते हैं और निश्चित रूप से आगे जाकर उसको एक जगह पकड़ लेते हैं और वो सोचते हैं कि इसका इसने मेन अपराध जो है वो द्रौपदी का किया है, तो उसको बंदी बनाकर हम द्रौपदी के पास लेके जाएंगे ताकि वो ही निर्णय करेंगे क्या करना है इसका, वो जब निर्णय करेंगे वैसा हम करेंगे। तो उसको बंदी बनाकर बांध कर घसीटते हुए द्रौपदी के पास लेके आते हैं जहां पर वो 5 शव है और द्रौपदी विलाप कर रही है। अभी एक जगह पर दुर्योधन का छिन्न विच्छिन्न शरीर देखा, अभी तक तो मरा नहीं है लेकिन देखा मरणासन्न अवस्था में है, तो अश्वत्थामा ने कैसा बर्ताव किया? और अभी 5 पुत्रों का बहुत गलत तरीके से वध किया गया है और द्रौपदी रो रही है और जिसने वो किया उसको सामने लेके आए हैं और वो कैदी बनाकर लेके आए हैं और वो कुछ भी आदेश दे सकती है, इसके टुकड़े करो, इसके 100 टुकड़े करो और कुत्तों को खिलाओ या गिदर को खिलाओ या तो जला दो इसको, हमारे पुत्रों को जलाने का प्रयास किया, या इसका शिरच्छेद कर दो जैसे उसने हमारे बालकों का किया है। कुछ भी कहना भी आप उसको नहीं कहेंगे कि अरे गलत बोला द्रौपदी ने, ऐसा बोलेंगे आप? इतना बड़ा आघात उस पर हुआ है तो वो कहेगी, अगर कहे होती तो हम लोग उसको बुरा नहीं मानते, लेकिन जिसको सत्संग प्राप्त है उसकी मति कैसे होती है? उसका प्रमाण यहां पर है। सत्संग जिसका प्राप्त हो, जिसको प्राप्त हुआ है उसकी मति शुद्ध हो जाती है, संतुलित हो जाती है, सार असार हाँ वो बुद्धि उसके पास में होती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है रैशनलिज्म वो समझ सकते हैं। और खास करके अपने जीवन के सबसे बड़े संकटमय स्थिति में भी वो अपना संतुलन नहीं खोते, अगर सब कुछ ठीक है कोई कष्ट नहीं है एवरीथिंग इज नॉर्मल तो अपना संतुलन सब दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा गया है कि यू आर वॉट यू आर दैट वेन यू आर पुट इन टू स्ट्रेस, अगर आपको कष्ट में डाला जाए तो आपका जो मूल स्वभाव है ऊपर आ जाता है, बाकी सब जगह आप ठीक रहते हो, लेकिन जैसे आपके कष्ट आता है जीवन में आपके, उस समय आप जो स्वयं जो अंदर से आप जो खुद हैं वास्तव में जो है सत्य में वो प्रकट हो जाता है। तो द्रौपदी वास्तव में क्या थी, वो इस भयंकर कष्ट में प्रकट हो गया, उसने कहा कि इसको आप नहीं मारना है, क्योंकि वो दो तैयार थे ना, भीम और अर्जुन तो रेडी है, आप बोलो गदा से मारना है कि तलवार से मारना है कि धनुष से मारना है कि लात मुक्के से मारना है, बताओ खाली बस, वही उसकी उम्मीद थी कि वो ऐसे ही बोलेगी, लेकिन वो कहती है कि इसे मत मारो, खुद विलाप कर रही है, आंखों से नदियां बह रही है अश्रुओं की, लेकिन वो कह रही है कि मत मारो इसको, क्यों नहीं मारना है उसको, मारना चाहिए उसको। आप जानते हैं ना भीमसेन कैसे हमारे, उनका महाभारत में एक डायलॉग हमेशा बोलते थे वो, शार्ट से एंड तक, उठा के पटक दूं दुर्योधन को, उठा के पटक दूं, हर समय पे भैया को पूछते थे, भैया बोलते थे शांति रखो तो अभी भी रेडी है वो, लेकिन द्रौपदी कहती है कि मुझे इन 5 बालकों को खोने पर जितना कष्ट हुआ है माता के रूप में, वो कष्ट मैं इसकी माता जो कृपी है, जो हमारी भी रिश्तेदार है, हमारी गुरु की पत्नी है, गुरु माता है, उनको नहीं देना चाहती। मैं अगर भोग रही हूं मेरे किसी संचित के वजह से, संस्कार की वजह से, तो ठीक है मैं तो भोगी रही हूं और भोगूंगी भी उस दुख को, लेकिन वो मेरे वजह से किसी और माता को मैं नहीं देना चाहती। और गुरुदेव और गुरु माता हमको बहुत प्रिय है, गुरु माता जीवित है तो उनको ये कष्ट में देना नहीं चाहती, मैं तो खो ही चुकी बालकों को, उसके बालक भी वो खो जाए ऐसा मुझे नहीं करना है। लेकिन कृष्ण भगवान जो है ना वो भक्तों के ऊपर का अपराध जो है ना वो नहीं सहन सकते, भगवान के भक्त जो होते हैं ना वो भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, इसलिए भगवान वहां खड़े हैं, भगवान को प्रतिशोध का भाव हो रहा है कि इसको दंड देना चाहिए, और भगवान की भक्त जो द्रौपदी है वो उसको क्षमा कर रही है। कितनी बड़ी बात है समझने के लिए, कितनी महान बात है, हाँ कितनी प्रेरणादायक बात है कि जीवन के ऐसे कठोर दुखदायी प्रसंग में भी अपनी करुणा को भक्त खो नहीं सकता है, उसकी करुणा नष्ट नहीं होती, इतनी करुणा है उसके मन में, तो फिर भी भगवान बोलते हैं कि चलो ठीक है तुम्हारा अगर वध नहीं करने का इच्छा है तो मैं कुछ करता हूं इसके लिए, वध नहीं करूंगा, लेकिन भगवान आज तक के पूरे पुराणों के शास्त्रों के वेदों के इतिहास में कहीं भी ऐसा शाप भगवान ने किसको नहीं दिया है, वो भगवान अब बोलने जा रहे हैं। भगवान पहले तो उसका एक सर पे एक मणि होता है, बहुत ही शुद्ध, बहुत पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली एक मणि होता है, जो सारा तेज जो था ना अश्वत्थामा का, उस मणि की वजह से था। उस मणि को भगवान उखाड़ लेते हैं और जो भी बोलते ना आगे वो सुनना भी इतना कठिन है। वो कहते हैं कि ये जो मणि मैंने निकाला हुआ है उससे जो जख्म हुआ है उसका दर्द कभी भी नहीं मिटेगा। आप जो चाहे करो, जो चाहे दवा करो, कुछ भी करो, इतना भयंकर दर्द होगा, इतना भयंकर दर्द होगा कि आप मरना पसंद करोगे लेकिन मरोगे नहीं। सेकंड शाप देते हैं कि आप ये दर्द सहते रहोगे, ये जख्म गीला रहेगा, कभी सूखेगा नहीं, कभी हील नहीं होगा, और आप मरना चाहोगे फिर मरोगे नहीं, जाओ गेट लॉस्ट, चले जाओ यहां से। अभी जिसको भगवान ने ऐसा भयंकर शाप दिया है कौन तार सकता है, सोच सकते हैं क्या स्थिति है उसकी, हाउ अनफॉर्चुनेट। द्रौपदी ने तो जीवन दान दे दिया, लेकिन अभी वो बोलेगा जीवन दान क्यों दिया, वहीं पर मार देती, अगर बोलती मार दो तो मैं इस भयंकर जीवन से बच जाता, आगे वाले जो आने वाला है, चलो दो तीन मिनट में मृत्यु हो जाएगी, खत्म, अगला शरीर मिलेगा, अगला शरीर परिवार में कहीं मिलेगा, बाद में वहां देखेंगे क्या होता है। लेकिन अभी जो शाप मिला है उसकी वजह से ना मृत्यु होगी, चाहने पर भी दर्द होता रहेगा, खून भी बहता रहेगा, भटकते रहूंगा, और भगवान ने दिया वो, और कहां जाए उसको भी माफी करने के लिए, चले जाते हैं। इतना दर्द का अनुभव करते हैं, इतने भयंकर पाप किया है उसने, सब जगह भटकते हैं। फिर कहते हैं कि वो शिवजी के पास जाते हैं, क्योंकि शिवजी उनके पिताजी के भी इष्ट थे। तो शिवजी कहते हैं माफ करना, हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी भी यही कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकते, हमारे मालिक ने अगर श्राप दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या अधिकार है, अगर हमारे मालिक की ऐसी इच्छा है तो उसको काटने की हमारी क्या शक्ति और क्या अधिकार है, कैसे हम इच्छा कर सकते हैं कि उसको काट कर आपको कुछ श्राप दे दें। तो आपके लिए तो कोई उपाय नहीं है, कोई चारा ही नहीं है। फिर भी उसकी करुण अवस्था देखकर उनको भी विचारा था कुछ करना चाहिए, मतलब कुछ ऐसे एक तो चांस तो कम से कम लेना चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए इसका दुख निवारण करने की, क्योंकि उसको इतना दर्द में था, वो इतना कष्ट में था कि वो ऐसा दर्द और कष्ट किसी को होना नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि शत्रु को भी ऐसा कष्ट होना नहीं चाहिए, ऐसा कष्ट उसको हो रहा था। तो ब्रह्मा जी को भी दया आती है, वो कहते हैं एक काम करो, आप बरसा नहीं जाओ, वहां पर राधा रानी को पुकारो, क्योंकि एक और शक्ति है भगवान के ऊपर। हाँ, कैसा है कि कहीं पोजीशन कहीं नहीं है ऐसा कि विश्व के निर्माता या विश्व के नियंत्रक, ऐसे कोई पोजीशन नहीं है उनकी, लेकिन है पोजीशन उनके ऊपर की। भगवान भी उनसे लालायित रहते हैं, जिनके धाम में हम लोग बैठे हैं राधा रानी, यहाँ पर भगवान उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आते हैं, उनको पुकारने के लिए आते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सखी वेश धारण करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, चरणों में गिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं, अलग अलग प्रसंग में उनके अधीन रहते हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनकी इच्छा के लिए जो मन में उनके नहीं है वो भी कर सकते हैं, अगर वो सिफारिश कर दे तो क्या नहीं कर सकते। जैसे हमारी सेवा जो आप कर रहे हो, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि वो अनन्य भक्ति चाहते हैं। अन्य मतलब क्या, 1% भी अनन्य नहीं होना चाहिए उसके अंदर। उसको अनन्य कहते हैं, थोड़ा ऐसा 0.1% किसी को भी नहीं चाहते, वो पूरे 100% प्रतिशत अगर उनके प्रति किसी ने अर्पण अपने आप को किया, समर्पण, तो ही उसकी ओर देखते हो, तब तक आप इंतजार करते रहो। कठिन है बहुत श्री कृष्ण को आसानी से प्रसन्न करना, लेकिन अगर राधा रानी को आपने किसी तरह से प्रसन्न कर लिया, क्योंकि वो बहुत भोली वाली है, वो इतना अनन्य वगैरह का विचार नहीं करती है, थोड़ी बहुत आपने प्रामाणिकता से उनकी और उनकी भक्तों की सेवा किया, तो कहते हैं कि उसी क्षण वो आपकी सिफारिश कृष्ण भगवान से करती है, और उसी क्षण कृष्ण भगवान आपकी ओर देखते हैं, शायद देखना नहीं चाहते लेकिन फिर भी देखते हैं, क्योंकि वो राधा रानी ने सिफारिश किया है। सिफारिश करने वाला जो व्यक्ति है वो बहुत ही शक्तिशाली है, कृष्ण के लिए उनका स्थान बहुत सर्वोच्च है। तो कहते कि एक आपको आशा है कि आप अगर बरसाने जाओगे राधा रानी के धाम में तो राधा रानी को पुकारोगे तो शायद आपका दर्द देखकर उनको करुणा आ सकती है। अभी इस बीच में क्या होता है कि इतने समय तक इतना सारा कष्ट भोगने से अश्वत्थामा हृदय से शुद्ध हो जाता है। अभी तक तो वो कपटी, पापी, षड्यंत्री, कुसंगत करने वाला, हाँ, मति भ्रष्ट होने जिसकी हो गई है, ऐसा सब उसकी स्थिति थी कई सालों तक। लेकिन इतना दर्द भगवान ने उसको दिया तो शुद्ध हो गया। इसलिए कहते हैं कि पाप फल और पुण्य फल इनमें से क्या चॉइस करना चाहिए? पाप फल चॉइस करना चाहिए, क्योंकि पुण्य फल आप चुनते हो ना तो पुण्य फल से सुख मिलता है, सुख मिलने से भगवान को भूल जाते हैं। सुख जब होता है ना तो भगवान की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम लोग सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं और वो पुण्य फल से मिल रहा है तो भगवान की जरूरत क्या है। लेकिन जब पाप फल होता है तो पाप फल में कष्ट होता है, तो कष्ट होते ही भगवान की याद आती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए श्रीमद् भागवत में कुंती देवी कहती है कि भगवान वो कष्ट हमको बार बार दे दो जो हमारे जीवन में इतनी बड़ी संख्या में लगातार आते रहे, वो और देते रहो आप, क्योंकि जितने कष्ट आते रहे हमने आपको पुकार हम आपको पुकारते रहे तो आप आते रहे और समस्याओं का समाधान करते रहे और हम आपकी शरण में रहते रहे, तो जीवन अच्छा चलता रहा, एकदम सुरक्षित आपके चरणों की छत्रछाया में, कृपा छत्रछाया में। इसलिए बार बार ये दुखों को देते रहो ताकि आपकी याद आती रहे और आपकी छत्रछाया में हम रहते रहे। ये थोड़ा सा कठिन बात है, बोलना भी कठिन है ऐसा, हे भगवान अभी संध्या आरती हो रही है, भगवान दे दो कष्ट दे दो। इट्स नॉट ईजी टू से लाइक दैट। लेकिन जब कुंती हमको भागवत में समझा रही है तुमको प्रयासपूर्वक ऐसे करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही पुण्य फल मिला ना तो हम फंसना हमारा शुरू हो जाता है, वी स्टार्ट गेटिंग एंटेंगल्ड अनोइंगली, बंधन में फंस जाते हैं हम लोग। तो ये दुखों की वजह से वो इतना पुकारता रहा, जगह जगह गया ना, वो सब जगह गया, दया करो, करुणा करो, बचाओ मुझे, रिहा करो, मुक्त करो, मैं सह नहीं पा रहा हूं उसको, प्लीज सेव मी, नम्र भी बनाओ। सारा अहंकार नष्ट हो गया उसका। दर्द का और एक अच्छा गुण होता है, दर्द होने पर ना एकदम आदमी नम्र हो जाता है। जो किसी बड़ी कंपनी के CEO के पास आप जाकर कुछ आपको डोनेशन लेना है या कुछ किताब उसको देना है तो वो कितना बोलेगा अकड़ के, टाइम नहीं है। आप जानते हैं ना प्रभुपाद जी वहां बैठते थे बाहर, और सुमति महाराज जी शाम तक उनको वेट कराते थे, गिरिराज महाराज भी ऐसे वेट करते थे बड़े बड़े अफसरों के बाहर जीने पर। लेकिन वही बड़ा अफसर जब भी बीमार हो जाता है और अस्पताल में भर्ती होता है तो एकदम ऐसे, इसलिए हमने अस्पताल खोला है भाई दबी। बड़े बड़े मछलियों को अगर पकड़ना है अस्पताल का बेड जो है ना वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो अच्छे अस्पताल के प्लेटफॉर्म में कोई आता है ना तो सारा अपना अहंकार छोड़ के आता है वो, एकदम हाथ जोड़ के। अगर वो प्रधानमंत्री भी होगा ना, राष्ट्रपति भी होगा, तो भी डॉक्टर से पूछेगा कब डिस्चार्ज दोगे, सर कभी डिस्चार्ज होने वाले, डॉक्टर बोलते हैं 2 दिन रहना पड़ेगा आपको, अभी तक ठीक नहीं हुआ है आपका, 4 दिन रुकना पड़ेगा अभी, ऐसे बोलेंगे, ICU से फिर वार्ड में जाना पड़ेगा, बोलते हैं ना आप ऐसे, देखते हो क्या प्रधानमंत्री जल्दी डिस्चार्ज करो, ऐसे होते क्या? आपको जो मेडिकल एडवाइस देना है वो देना ही पड़ता है। वहां पर वो व्यक्ति एकदम अच्छी चेतना में होता है, उस तरह से दर्द एक अच्छी चीज है जीवन में। हाँ, दर्द को ऐसा बुरी नजर से मत देखना, दर्द आपको भगवान के पास ले जा सकता है, सुख आपको भगवान से दूर ले जा सकता है, दोनों में आपको भगवान के पास लाने की क्षमता है। लेकिन अधिकतर सुख भगवान के दूर लेके जाता है और अधिकतर दुख जो है भगवान की याद दिलाता है, पुकार निकलती है हृदय में किसी न किसी के लिए। तो इस सारी प्रक्रिया में थोड़ा सा वो नम्र हो जाता है, शुद्ध भी हो जाता है और यहां पर आता है बरसाने में। और यहां से 5 किलोमीटर दूर छाता के रास्ते पर राइट साइड में एक गांव आता है, उसका नाम है पिसाया, उसका शास्त्रीय नाम है पिपासा वन, उसमें वो भजन करना आरंभ करता है और रो रो के राधा रानी को पुकारता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुकारते तो सब लोग हैं, लेकिन जब बालक पुकारता है ना, कैसे पुकारता है, असहाय होकर, तब माँ जो है भाग के आती है। बाकी सब लोग ऐसे चिल्लाते हैं मम्मी मम्मी, लेकिन जब बहुत जोर से चिल्लाते हैं तो मम्मी सब गैस वैस बंद करके भागती है, क्या हुआ बालक को, उसकी चीख जो है ना वो किस प्रकार की है वो सुनकर माता जो है वो प्रतिसाद देती है हमेशा। हम भी ऐसे ही हैं, हम लोगों ने बच्चों को जन्म दिया है तो हम सब जानते हैं कि किस पुकार को सुनना है और किस पुकार को नहीं सुनना है। सब जानते हैं, उसका कोई साइंस नहीं है, कोई एम्पलीट्यूड कोई फिजिकल वो साउंड एम्पलीट्यूड का कुछ ऐसा एनालिसिस नहीं होता है उसमें, कोई मीटर नहीं होता है कि भाई ये मीटर का घंटी बजे तो जाना है, ऐसा नहीं है, वो सबको अंदर सेट है पूरा वो सॉफ्टवेयर। वो जो चीख होती है ना वो माता को सब कुछ काम बंद करके भागती है माता। तो अश्वत्थामा ने इस प्रकार से पुकारा, हृदय से पुकारा। हमको भी सब लोगों को हृदय से पुकारने को सीखना चाहिए, जब हृदय से पुकारा जाता है ना तो वो पुकार सुनी जाती है और उसके लिए प्रतिसाद होता है, उसके लिए कुछ रिस्पॉन्स मिल सकता है आपको। तो अश्वत्थामा जैसा व्यक्ति भी पुकार रहा है तो राधा रानी सुनती है। तो आप सोचिए, आप लोगों ने तो किसी ने अश्वत्थामा जैसा पाप तो नहीं किया है ना, रावण कुंभकर्ण जैसा भी पाप नहीं किया है, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जैसा पाप नहीं किया है, शिशुपाल दंतवक्र जैसा पाप नहीं किया है, अश्वत्थामा जैसा पाप भी नहीं किया है। और अगर हम लोग पुकारेंगे तो सुनेगी कि नहीं सुनेगी, हमारे अकाउंट में उतना भयंकर पाप नहीं है, एटलीस्ट ये जन्म में तो नहीं है, आगे पता नहीं पीछे क्या किया हमने, लेकिन स्मृति नहीं है उतनी, लेकिन उम्मीद है कि हम लोगों को राधा रानी ने अपने धाम में सेवा दिया है और देती रहती है, हो सकता है कि हमने ऐसा जघन्य पाप नहीं किया होगा। तो कमी किस बात की है, कमी उस प्रकार की पुकार की कमी है, वो प्रकार की पुकार हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हमको अभी पुकार सुनी नहीं जा रही है, इसलिए यहां पर हम लोग आते हैं सीखने के लिए कैसे पुकारा जाता है। और जितना नम्र होंगे उतनी पुकार में कशिश आएगी, जितना अहंकारी होंगे उतना पुकार में मैं क्यों पुकारूं, मैं अपने आप में समर्थ हूं, जो भी करना है, आई एम एजुकेटेड आई एम पावरफुल, ऐसा हमको लगता है। लेकिन यहां पर आकर जो दैन्य का अनुभव करता है वो भाग्यवान जीव है, जो समझता है कि आई एम हेल्पलेस, एक्चुअली मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत अधिकार है, बहुत अच्छा पोजीशन है, बहुत प्रभावशाली स्थिति में मैं हूं, बहुत कुशल कला मेरे पास में है, मेरे पास बहुत सारे साधन है जिस पर मैं निर्भर रह सकता हूं, आई कैन डिपेंड ऑन दोज थिंग्स, लेकिन ये सब के होने पर भी एक असहायता हृदय में अनुभव करना, ये यहां की सबसे बड़ी भेंट है। द बिगेस्ट गिफ्ट of this place is the possibility of humility that we can achieve in spite of all the resources that we have. ये इस जगह की विशेष भेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सेवा का बहाना लेके आते हैं, तो वो सेवा के बहाने से वो गिफ्ट जो है ना नम्रता की वो प्राप्त हो जाती है, अहंकार का नष्ट होना, नम्रता को प्राप्त करना और वो पुकारने में सफल होना। तो वो यहाँ पर कैसे आना, लोकल कॉल है, एसटीडी इंटरनेशनल कॉल नहीं है, यहाँ पर सब जगह पर वो विराजमान है, कहीं भी पुकारेंगे तो वो सुनती है, सुनने के लिए बैठी है, आप विश्वास रखो इस बात पर। तो अश्वत्थामा ने पुकारा उनको, रो रो के पुकारा, तो उसकी पुकार जो है असहाय करुण पुकार सुनकर राधा रानी ने उनको दर्शन दिया। इमेजिन, जिसको भगवान ने माफ करने का छोड़ ी दो, माफ तो छोड़ ही दो, लेकिन ऐसा जघन्य श्राप दिया है उसको भी राधा रानी ने दर्शन दिया है, प्रसन्न होकर राधा रानी, और राधा रानी का दर्शन होते ही उसके जख्म का खून बंद हो गया, उसका दर्द मिट गया, उसको अति आनंद का ऑन द स्पॉट अनुभव हुआ, एक ही साथ एक दर्शन मात्र से सब पीड़ा नष्ट हो गई उसकी, उसका व्रण जो है वो खत्म हो गया, दर्द खत्म हो गया। राधा रानी ने कहा, मैं आपसे बड़ी प्रसन्न हूं, अभी आप यही रहो। क्यों यही रहो, क्योंकि मरने का तो वरदान नहीं दिया ना हमको, हम मरोगे नहीं, जीवित ही रहोगे जब तक सृष्टि रहेगी तब तक, तो आप मेरे धाम में रहो, इधर रहो। और राधा रानी स्वयं बताती है उसको कि आप कहां पर हो। राधा रानी कहती है कि आप मेरे पिपासा वन में हो, मेरा प्रिय पिपासा वन है ये। एक होती है प्यास और एक होती है पिपासा, एक होती है नॉर्मल थर्स्ट और एक होती है बहुत ही तीव्र प्यास, उसको पिपासा कहते हैं। तो जब मैं और मेरे प्रियतम श्री कृष्ण मिलने के लिए पिपासा का अनुभव करते हैं, तीव्र प्यास मिलने का अनुभव करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमारा मिलन होता है। हम यहाँ पर रास नृत्य करते हैं और एक समय पर जब रास नृत्य करते समय कृष्ण को प्यास लगी थी तो मैंने कुंड खोदकर उनको पानी पिलाया था, वो मेरे नाम से प्रसिद्ध है राधा कुंड। जब मुझे एक बार प्यास लगी थी तो मेरे प्रियतम श्री कृष्ण श्याम सुंदर जी ने मुरली से कुंड खोदकर मुझे जल पिलाया था, वो श्याम कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। दोनों पिपासा वन में है, आप यहीं रहो और इस वन की रक्षा करो। आज भी अश्वत्थामा जी वहां निवास करते हैं और जो हृदय से पवित्र हो चुके हैं उनके मन में कोई भौतिक कलमश नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई भौतिक लोभ नहीं है, कोई अन्य इच्छा नहीं है भगवान के सेवा के बिना, जो पवित्र हो चुके संत पद पर पहुंच चुके हैं ऐसे व्यक्तियों को अश्वत्थामा दर्शन देते हैं और अश्वत्थामा उस वन की रक्षा करते हैं। तो और क्या होता है पता है? वहां पर वो झाड़ी है, आज भी उसको लोकल भाषा में अश्वत्थामा की झाड़ी बोलते हैं, शास्त्र में पिपासा वन बोलते हैं और लोकल लैंग्वेज में पिसाया भी कहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग उसको अश्वत्थामा की झाड़ी के रूप में जानते हैं क्योंकि बहुत गर्द झाड़ी है, ऐसे बहुत गर्द झाड़ी है, उसमें थोड़ा थोड़ा रस्ते ऐसे बहुत विशाल है वो। और जो भी व्यक्ति उसमें लकड़ी लेता है अगर वो भगवान के सेवा में, कोई भंडारा है, कोई यज्ञ है, कोई पूजा है, कोई विवाह है, कोई कुछ भी ऐसा पवित्र कार्य है उसके लिए लेता है तो ठीक है, अगर स्वार्थ के लिए उठाता है तो या तो वो अंधा हो जाता है, या तो वो पैरलाइज हो जाता है, या तो वो मर जाता है। 2 साल पहले एक यंग लड़के मस्ती मस्ती में वहां की लकड़ी तोड़ के खैरा गांव में गया, खैरा गांव के सामने ही है वो, 1-2 किलोमीटर ऐसे, तो वन से बाहर निकलते ही घर पहुंचने के पहले ही अंधा हो गया वो। उसके बुजुर्गों ने बताया उनको, अरे पगले तुमने क्या किया पता है क्या उसको, जाओ जाके लकड़ी छोड़ के आओ। बोले बाबा मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं कहाँ जाऊं, तो साथ में किसी को दिया और वो लकड़ी वगैरह जब वन में छोड़ा वापस दृष्टि प्राप्त हो गई। आपके साइंस में क्या लिखा है कोई ऐसा कुछ, एनी एक्सप्लेनेशन, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, सम एयर इज देयर, सम बैक्टीरिया इज देयर, ऐसा कुछ है क्या उधर? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो धाम में जो होता है ना वो हमारे सारे साइंस के विपरीत होता है, हमारा साइंस उसको समझ नहीं पाता है। हमारा साइंस तो भौतिक शास्त्र है, भौतिक शास्त्र से दिव्य बातें समझ में आने नहीं आ सकती और दिव्य बातों को आप समझा भी नहीं सकते। उस आधार पर दिव्य बातों को दिव्य तत्वों के आधार पर समझ सकते हैं और भौतिक बातों को भौतिक तत्वों के आधार पर समझ सकते हैं, लेकिन अपोजिट नहीं कर सकते एक दूसरे को। भौतिक तत्वों के आधार पर दिव्य बात नहीं समझ सकते हैं और दिव्य बात के आधार पर भौतिक तत्व नहीं समझ सकते, दे आर इनकम्पैटिबल। तो आज भी आप जाएंगे ना उस वाड़ी में, झाड़ी में, तो आपको जगह जगह ऐसे ना रची हुई लकड़ियां मिलेंगी, जैसे हमने कहा रची तिकल यज्ञ में, ऐसे रची हुई बहुत सारे ढेर मिलेंगे आपको सब जगह पर। वो क्या है, लोग ले जाते हैं अपने पवित्र कार्य करते हैं, बची हुई लकड़ी आकर वहां पर सजा के चले जाते हैं, तो सब जगह पर वहां पर ऐसे ढेर मिलेंगे आपको। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो जानकार है उसको पता है वो हिम्मत नहीं कर सकता है, अश्वत्थामा वहां पर घूमते रहते हैं। तो यह कहानी मैंने आपको क्यों बताई आज, इसलिए बताई कि जो सब जगह हार जाते हैं, ब्रह्मा से भी हार गए, शिवजी ने भी मना कर दिया, सब देवताओं ने मना कर दिया, किसी ने खड़ा नहीं किया, भगवान ने उसको शाप दे दिया, हाँ भगवान के भक्त पीछे लगे हैं आपके मारने के लिए, ऐसे व्यक्ति को भी अगर वो राधा रानी के शरण ग्रहण कर लेता है तो वो बच सकता है। एक ऐसा स्पॉट है, ऐसा एक स्थान है, ऐसा एक स्टेशन है जहाँ पर सब अपराध माफ किए जाते हैं, अगर उसको नम्रता से निवेदन किया जाए, पश्चातापवश पुकारा जाए, पश्चाताप और नम्रता के साथ पुकारा जाए, तो वो वहां अपराध माफ हो सकता है। जो कहीं भी माफ नहीं हो सकता है वो इस दरबार में माफ हो सकता है। उस जगह पर हम लोग आए हैं और हमने शायद अश्वत्थामा का इतने पाप नहीं किया होगा, लेकिन पाप किया हुआ है इसलिए हम लोग यहां पर है। जो भी शरीर प्राप्त है ये से प्रूफ है इसका कि अभी भी शरीर में है, इसका मतलब कुछ बाकी है हमारा यहां पर भोगना, इसलिए हम लोग यहां पर है। इसको नम्रता से एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे अरे हमने जन्म से कभी चाय नहीं पी, कभी तम्बाकू नहीं खाया, कभी मांस नहीं खाया, कभी माता के गर्भ से भी नहीं खाया, माता के गर्भ से भी हमने एकादशी किया है, ऐसे बहुत लोग यहां मिलेंगे आपको। तो हमने कहा पापी नहीं किया, हम लोग आप कैसे बोल सकते कि हम लोग यहां पर, अरे पुराना एक हिसाब किताब जो है ना जो आपको लेके आए माता के गर्भ में उसका क्या किस वजह से माता के गर्भ में आए, वहां पर आपने एकादशी किया गर्भ से, लेकिन किस वजह से गर्भ में आए पहले कष्ट भोगने के लिए, वो तो है ना संचित। तो सबसे पहले हमको ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होने पर गर्व हटता है और नम्रता प्रकट हो जाती है। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, सत्य के विषय में ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सत्य के ज्ञान होने से बहुत सारे दुख दर्द मिट जाते हैं और खास करके अहंकार मिट जाता है, नम्रता आ जाती है, फिर उधर रियलिटी। और रियलिटी क्या है कि हम सब लोग यहाँ पर भगवान का विद्रोह करके आए हैं इसलिए दुख भोग रहे हैं, ये रियलिटी है। और ये अगर हमने स्वीकार कर लिया नम्रता के साथ तो हम बच सकते हैं, नहीं स्वीकार किया चलते रहे ऐसे ही, कितना बड़ा क्या हुआ हमने कुछ नहीं किया, ऐसे कुछ नहीं भी कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, डॉक्टर हूँ, लोगों का दवा इलाज करता हूँ, किसी को फ्री में कर देता हूँ, डिस्काउंट दे देता हूँ, आउट ऑफ द लाइन ले लेता हूँ गरीबों को, क्या क्या करता हूँ, अच्छा काम भी कर रहा हूँ मैं, इसमें क्या है, अच्छे काम का भी गर्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी गर्व हो अच्छे काम का बुरा काम का वो बांध तो देगा ही आपको, अधोगति कराएगा आपकी और आगे जाकर कष्ट जरूर देगा। तो ये तो कैंप का बहाना है, हम सब लोगों को एक निवेदन करने का मौका है राधा रानी के चरणों में कि बस अभी हम समझ चुके हैं कि हमारा जीवन सदा पापे रहता नहीं को पुण्य रलेश। ये स्थिति में आने के लिए भी टाइम लगता है, इट्स नॉट सो इजी दैट वी कम टू दिस स्टेज नेचुरली। भक्ति में ऐसा है ना, प्रपंच जो है ना वो होते रहता है, प्रपंच यानी क्या, रूटीन वर्क। अच्छा आप माँ हो, आप डॉक्टर हो, आप पिता हो, या और कोई फ्रेंड हो, या और कोई सोसाइटी के चेयरमैन हो, कुछ भी हो, एक ऐसा करते रहते हैं अपना कर्तव्य, वो होते रहता है। जब आप छोटे से थे तो अपने आप कभी समय के अनुसार बड़े हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो प्रपंच बोलते हैं उसको, नौकरी भी कर लिया आपने, बचपन में कमाते नहीं थे अभी कमा रहे हो, परिवार को संभाल रहे हो, अभी बहुत बड़े हो गए तो माँ बाप को भी संभाल रहे हो, वो आपको संभालते थे अभी आप उनको संभाल रहे हो, दिस इज कॉल्ड प्रपंच। वो अपने आप होते रहता है, लेकिन अध्यात्म परमार्थ और भक्ति जो है ना वो करनी पड़ती है, वो अपने आप नहीं होती है। आप सो रहे हो सोलामाला हो गया, ऐसा होता है क्या कि 6 to 8 में सोलामाला हो जाती है, आप सो जाओ कुछ नहीं ऑटोमेटिक हो जाता है, अरे यू टू वेक अप, यू टू ट्राई योर बेस्ट, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा माइंड को एक जगह रखने के लिए, आपको माइंड यहाँ वहाँ लेके जाएगा आपको, किधर क्या हो रहा है, सब पुकार आपको सुनाई पड़ रही दुनिया की, लेकिन आपको सबको हटा के नो नो बोल के उनको पुकारना होगा, उसमें मन लगाना होगा, अपने आप नहीं होता है कुछ। इसलिए यहां पर सेवा करने के लिए हम लोग आ रहे हैं। गुरुदेव बताते हैं कि सेवा सत्य परिस्थिति जीवन की जानने का बहुत अच्छा मार्ग है, टू नो द रियल फैक्ट ऑफ लाइफ, सेवा इज द बेस्ट मीन्स। जीवन के उद्देश्य को समझना है तो भी सेवा एक अच्छा मार्ग है, सेवा करते करते जीवन का उद्देश्य भी आप समझ सकते हो, जीवन के विषय में वास्तव भी आप समझ सकते हो, द ट्रूथ ऑफ लाइफ ऑल्सो समझ सकते हो। सेवा ऐसा एक मार्ग है जो आपको हमेशा माया से बचा के रखेगा, जब तक आप सेवा में हो माया आपसे दूर रहेगी, जब सेवा से आप ब्रेक लेते हो माया तुरंत आपके सीट पे आके बैठ जाती है। इसलिए कहते हैं कि निरंतर सेवा होनी चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार की क्यों न हो, लेकिन भगवान की स्मृति में नित्य सेवा होती रहनी चाहिए। अगर आपको वास्तव में माया से बचना है, अगर आप समझ चुके हो कि माया से बचना जरूरी है, नहीं तो आपको लगेगा माया कितनी अच्छी है, कितने अच्छे भोग मिल रहे हैं, इतना मजा चल रहा है, एवरीथिंग इज सो नाइस, व्हाई माया इज बैड, ऐसा लगता होगा तो फिर वो दुर्भाग्य है। लेकिन अगर हमको ज्ञान हो चुका है कि माया से तकलीफ होती है और माया से बचना है तो सेवा एक सबसे अच्छा माध्यम है। इसलिए सेवा में लगे रहना चाहिए, सेवा आपको भगवान से जोड़े रखती है, कॉन्स्टेंट यूनियन विद द लॉर्ड इज पॉसिबल इन सेवा। और सेवा में कैसा होता है, सारे इंद्रिय लगे रहते हैं, मन बुद्धि इंद्रिय सब लगे रहते हैं। जब में क्या होता है, एक व्यक्ति ने भक्ति चारू महाराज को प्रश्न पूछा कि जब आप कथा करते हो ना तो अच्छा लगता है, लेकिन जब करते समय बहुत कष्ट होता है। तो उन्होंने ऐसा सुंदर उत्तर दिया उसका कि कथा जब आप सुन रहे हो तो आपके मन में ऐसा चित्र भी आ रहा है ना, क्या हो रहा है, उसके विजुअलाइज होता है, उसका दृष्टि पथ में सब दिखाई पड़ता है, कान भी एंगेज है, दृष्टि भी एंगेज है, मन के अंदर भी चित्रपट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जबकि अंदर केवल कुछ विजुअलाइजेशन नहीं है ना, कुछ दिखता नहीं है कि राधा कृष्ण नाच कर रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं भगवान, राधा रानी सुन रही है, झूला झूल रही है, तो फिर आपको नींद नहीं आ सकती। लेकिन वो स्थिति तो बहुत दूर है ना अभी, इसलिए सेवा है। प्रभुपाद जी कहते थे कि वैसे तो निरंतर जप करना चाहिए, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रतः, दृढ़ व्रत से सतत कीर्तन करना चाहिए हमको, लेकिन हम नहीं कर सकते 24 घंटा, 16 माला ही बहुत बड़ा पर्वत है पार करना के लिए, 17वीं माला तो बोलता है कि ये जन्म में नहीं हो सकती, 17th round इज लाइक माई गॉड। एकादशी तो कितना बड़ा अत्याचार है, 25 माला, एक तो भोजन भी नहीं करना है, ऊपर से 25 माला करना है, तो निरंतर तो क्या कर सकते हैं, निरंतर तो बहुत दूर की स्थिति है। इसलिए मैंने ये बात आपको बताना चाहता हूं कि ये करना पड़ता है, पुकारने के लिए भी प्रयास और अभ्यास करना पड़ता है, और वो करना चाहिए। मनुष्य जीवन उसी प्रयास के लिए दिया गया है, मनुष्य जीवन भोग के लिए नहीं दिया गया है। भोग लेने से भोग का कौशल बढ़ता है, भगवान को पुकारने से भगवान को पुकारने का कौशल बढ़ता है, जो भी आप करते हो वो कौशल बढ़ जाता है, यू बिकम एक्सपर्ट इन व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग, जो भी आप प्रैक्टिस करते हो उसमें आप कुशल हो जाते हो, डेंटिस्ट्री कर रहे हो उसमें कुशल हो जाएंगे, खाना बनाएंगे तो खाना बनाने में कुशल हो जाएंगे, अगर गालियां देते रहेंगे तो गालियां देने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, अगर किसी के अंदर फॉल्ट देखने का अभ्यास कर रहे हो तो आप फॉल्ट ढूंढने में एक्सपर्ट हो जाओगे, और किसी के अंदर सद्गुण ढूंढ रहे हो हमेशा तो सद्गुण ढूंढने में एक्सपर्ट हो जाओगे, किसी को नजर नहीं आ रहे आपको नजर आएगा सद्गुण, क्योंकि आपने उसका अभ्यास किया है। इसलिए क्या अभ्यास हम कर रहे हैं, प्लीज सी व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग, वेदर यू आर प्रैक्टिसिंग फॉल्ट फाइंडिंग और गुड पॉइंट्स फाइंडिंग। अगर आप भक्ति करने का अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भक्ति बढ़ेगी, अगर आप गलत काम करने का अभ्यास कर रहे हैं तो गलत काम बढ़ेगा। भक्ति में आने के बाद भी किसका अभ्यास कर रहे हैं हम, क्या अभ्यास करना चाहते हैं इच्छा से और क्या कर रहे हैं, वही कौशलता आपके अंदर बढ़ेगी। इसलिए यहां पर हमको एक ज्ञान प्राप्त होता है गुरु जी की कृपा से कि ये पुकारने का अभ्यास करने की जगह है, यहां पर शिव जी और श्री कृष्ण भगवान भी आकर पुकारते हैं, यहां पर बड़े बड़े पापियों ने भी पुकार कर अपना उद्धार कर लिया, तो हमें भी पुकारना है। हाँ, चाहे आप पेशेंट देख रहे हो, सर्जरी कर रहे हो, रिसेप्शन में पेशेंट का रजिस्ट्री कर रहे हो, उनको डिस्चार्ज कर रहे हो, वार्ड में दवा दे रहे हो, भोजन खिला रहे हो, मन में पुकारते रहो राधा रानी की कृपा के लिए, मुमकिन है ना। आप अभी आपको दाल दे रहे हैं पेशेंट को, तो मन में उसको पुकार सकते हो ना, राधा रानी की याद करके दे सकते हो ना, ऑपरेशन कर रहे हैं, हाँ, इंसिशन ले रहे हैं, राधा रानी को याद कर सकते ना, या तो मुंबई का सोच सकते हैं, मुंबई में शेयर मार्केट का क्या हो गया, अभी बहुत क्रैश हो गया लगता है, अभी क्या करूं, इधर बैठ के मैं ऑपरेशन करूं कि जाऊं वहां पर सीए से कंसल्ट करने के लिए, ये भी विचार आपको काटते समय आ सकता है ना मन में। तो वो सेवा करते समय सोचना क्या है, ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। किसी के बारे में बुरा सोचना है वो अपने आप को क्या समझती है, ये सोचना है कि राधा रानी को याद करना है, ये आप लोगों के हाथ में, हम लोगों के हाथ में। इसलिए इंद्रियों से सेवा करते रहो, मन से पुकारते रहो। गुरु जी ने क्या बताया था कि यहां पर कदम रखने के बाद में दोबारा बंबई पहुंचने तक निरंतर हृदय के अंदर के कोने में राधा रानी की कृपा को पुकारते रहना चाहिए, यू हैव टू कीप ऑन कॉलिंग हेल्पलेसली, तब आपका परम कल्याण निरंतर होते रहेगा, कंटिन्यूअस कल्याण के प्लेटफॉर्म पे रहेंगे आप और माया से सेफ रहेंगे। यहां पर आकर सेवा करना मतलब माया को कहना बाय बाय, इजिएस्ट वे टू से माया बाय बाय, एंड शी ऑल्सो विल टेक यू बाय बाय। तो बॉम्बे में आप बाय बाय करेंगे तो बाय बाय करके वो लेती नहीं है, वो आती रहती है, आपको गोद में लेती रहती है मुंबई में, अगर सेवा में नहीं रहेंगे तो मुंबई में, लेकिन यहां पर बाय बाय करेंगे और उनकी सेवा में रहेंगे तो वो भाग जाती है, बोले मेरे लिए कोई स्थान ही नहीं यहां पर, इसलिए पुकारो हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे।
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? एक आध प्रश्न ले सकते हैं। यस, माइक है क्या? दूसरा चालू है क्या? देखो पहले चालू है।
हरे कृष्णा।
यस।
अभी हम मंदिर गए थे तो रास्ते में बहुत ऐसे कुछ बच्चे आते हैं, मांगते हैं कुछ, बहुत माता जी उधर मैया बैठी रहती है, सबको हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते, बहुत इच्छा रहती तो दुख होता है मन को कि हम सबको नहीं सेटिस्फाई कर पाते।
चिल्डर तैयार रखो। हाँ, एक रुपए का 2 रुपए कॉइन तैयार रखो, 5 का कॉइन रखो, 10 के नोट तैयार रखो, और जितनी क्षमता है उतना दे दो। लेकिन यहाँ की जो डिमांड है ना, वो शायद आप पूरी नहीं कर सकते, इसलिए जितना आपकी क्षमता है उतनी पूरी करो, बाद में राधा रानी को प्रार्थना करो। कथा के विषय में कोई प्रश्न है? यस। अभी भी वही पर है वो, अभी वही पर है, और उनको सृष्टि के प्रलय तक मुक्ति नहीं है। हनुमान जी है वैसे वही है, इधर ही रहेंगे वो, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति राहितुकी त्वयि। भौतिक दुनिया में भी रहना पड़ेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक भगवान की सेवा में हमारा इंद्रिय मन बुद्धि लगा हुआ है हम सेफ हैं, उसको गोलोक में जाने की जरूरत ऐसा नहीं है।
Like totally different from what we have been hearing constantly, and that we know mostly, like the philosophy. I mean, although we have not realized it, but theoretically we know it. How to constantly hear about this topic?
Which topic?
This topic means about the glories of Radharani.
आपको अगर लगता है कि बंबई में केवल बॉडी एंड सोल के बारे में चर्चा होती है, वो गलत है। वहाँ पर भी ऐसे बहुत समय होते हैं जहाँ पर लीलाओं का वर्णन होते रहता है। इट्स अ बैलेंस सिचुएशन। मोस्ट फिलोसॉफी ऑल्सो इज देयर। उत्सव के टाइम पे लीला भी चर्चा होती रहती है, और यहाँ पर भी मैंने कथा बहुत छोटी सुनाई आपको, बाकी बॉडी एंड सोल सुना है ना कि नहीं सुना है? ऐसा है ना कि अल्टीमेटली जब हम शरीर और आत्मा इसके बारे में सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी आत्मा जो है ना वो शरीर के बंधन से धीरे धीरे मुक्त हो जाएगी, और फिर ये जो टॉपिक है इसको समझने में हम सक्षम हो जाएंगे। तो कथा में भी और अन्य समय में भी इसका बैलेंस होना जरूरी है। केवल कथा ही कथा सुनते रहेंगे तो मनोरंजन ही होता रहेगा और आत्मा शुद्ध नहीं होगी, लेकिन कथा के साथ में उसका सार सुनेंगे, उसका बोध समझेंगे, तो मनोरंजन भी होगा, आत्मशुद्धि भी होगी, और अपना भक्ति परिपूर्ण हो जाएगी। तो अगर आपको समझो इसी में रस प्राप्त करना है, समझो इसमें आपको रस प्राप्त करने की इच्छा है, तो रस प्राप्त करने की एक ही विधि है, वो है आत्मशुद्धि, और वो है साधना। हमारी साधना में क्या स्थिति दिया गया है? अधो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति तथा निष्ठा, और उसके बाद में रुचि, उसके बाद में आ सकती भगवान के लिए। तो अगर आपको आपका प्रश्न का एक लाइन में उत्तर देना है तो ये प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा, और एक दिन जब आपके अनर्थों की पूरी नहीं होगी लेकिन बहुत सारी निवृत्ति होगी, कम से कम अनर्थ करना आपने छोड़ दिया और निष्ठा पैदा होगी आपको भगवान के नाम पर, भगवान के ऊपर, भगवान के भक्तों पर, तो तब से आपको वो छोटी मोटी क्यों ना हो रुचि मिलना आरंभ हो जाएगा, और वो रुचि को पकड़ के आप चलते रहेंगे तो फिर आपकी रुचि बढ़ेगी आगे जाकर और तीव्र हो जाएगी, और रुचि का रूपांतर आसक्ति में हो जाएगा। तो सबका की है ना वो साधना है, दो चीजें उसके अंदर, एक है साधना और एक है भक्तों की सेवा। और भक्तों की सेवा के ब्रैकेट में लिखा है, क्या लिखा है? भक्तों का अपराध नहीं करना। ये गुरु जी बताते हैं कि दो युग धर्म है इस कलयुग के, एक हरिनाम और दूसरा भक्त सेवा। और भक्त सेवा के अंदर लिखा है भक्त अपराध नहीं करना, उससे बचना, उससे बचकर सेवा करना। ये दो आप करते रहेंगे ना तो भगवान के विषय का रस आपसे दूर नहीं है, मोस्ट गारंटेड फॉर्मूला। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि यू सिंपली चैंट हरे कृष्णा एंड डोंट डू वैष्णव अपराध, यू विल गो बैक टू गॉडहेड। प्रभुपाद जी ने भी यही कहा है, यू सिंपली चैंट हरे कृष्णा, डू नॉट ऑफेंड माय डिवोटीज, यू विल गो बैक टू गॉडहेड। सो इजी थिंग एक्चुअली इन वन सेंस, बट भक्तों का अपराध नहीं करना, माय गॉड, कदम कदम पे विचार मन में आता है कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो उसको वो कंडीशनिंग को दूर करने के लिए जप करना है। और जैसे मैंने बताया ना, भक्तों का अपराध नहीं करने का प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा आपको। प्रवृत्ति इतनी गहराई में छुप गई जा चुकी है कि वो स्पॉन्टेनियस अपराध होते रहते हैं हमारे, उसके लिए प्रयास पूर्वक, जानकारी पूर्वक, ज्ञान पूर्वक रोकना होगा, उसको अभ्यास करना होगा, तब वो अभ्यास खत्म हो जाएगा एक दिन अपराध करने वाला। जय जय श्री राधे। Thank you very much.